नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, बैटलफील्ड साइबर, विलियम जे होल्स्टीन और माइकल जे मैकलॉगलिन की गैर कथा पुस्तक है, जो अमेरिकी लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध चीन तथा रूस से जुड़ी साइबर गतिविधियों का विश्लेषण करती है। इसका विषय केवल हैकिंग की तकनीक नहीं, बल्कि वह व्यापक प्रतिस्पर्धा है जिसमें जासूसी, बौद्धिक संपदा की चोरी, महत्वपूर्ण अवसंरचना में घुसपैठ, रैनसमवेयर, सूचना हेरफेर और चुनावी प्रभाव डालने के प्रयास एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेखक दिखाते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी अक्सर खुले युद्ध की सीमा पार किए बिना दीर्घकालिक लाभ हासिल कर सकते हैं। पुस्तक का पहला भाग प्रमुख घटनाओं और उनके ऐतिहासिक पैटर्न को सामने रखता है, जबकि बाद का भाग सरकार, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के लिए नीतिगत तथा संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि साइबर सुरक्षा अब केवल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रश्न नहीं रह गई है। यह विश्वास, आर्थिक क्षमता, सैन्य आपूर्ति श्रृंखला और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का प्रश्न बन चुकी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजिटल ग्रे जोन में संघर्ष की अवधारणा। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि साइबर संघर्ष को युद्ध और शांति के पारंपरिक विभाजन से समझना पर्याप्त नहीं है। लेखक इसे डिजिटल ग्रे जोन के रूप में देखते हैं, जहां राज्य समर्थित समूह ऐसे कदम उठाते हैं जो गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिनके जवाब में सैन्य प्रतिकार करना अनुपातहीन या राजनीतिक रूप से जोखिम भरा लग सकता है। नेटवर्क में चुपचाप प्रवेश करना, डेटा की प्रतिलिपि बनाना, भविष्य में व्यवधान के लिए पहुंच बनाए रखना या ऑनलाइन बहस को प्रभावित करना, इन सभी गतिविधियों में खुली सैन्य लड़ाई जैसी स्पष्ट सीमा नहीं होती। यही अस्पष्टता हमलावर को लाभ देती है। पीड़ित पक्ष को पहले हमले की पहचान, फिर उसके स्रोत का आकलन और अंत में उपयुक्त प्रतिक्रिया तय करनी पड़ती है। लेखक के अनुसार, डिजिटल प्रणालियों की खुली, परस्पर जुड़ी और भरोसे पर आधारित प्रकृति इस चुनौती को बढ़ाती है। वाणिज्यिक क्लाउड सेवाएं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और सोशल मीडिया उपयोगी अवसंरचना है, पर वही प्रवेश तथा प्रभाव के माध्यम भी बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण की उपयोगिता यह है कि पाठक किसी एक वायरस या किसी एक घटना पर अटकने के बजाय निरंतर प्रतिस्पर्धा के पैटर्न को देखता है। पुस्तक साइबर जोखिम को एक बार की तकनीकी दुर्घटना नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य और संस्थागत तैयारी की परीक्षा के रूप में रखती है। दूसरा, चीन की साइबर जासूसी और औद्योगिक क्षमता का संबंध। बैटलफील्ड साइबर में चीन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान है, विशेषकर उस दीर्घकालिक साइबर जासूसी पर जिसका संबंध तकनीकी, औद्योगिक और रक्षा क्षमता से जोड़ा गया है। लेखक नोटवे के विरुद्ध कथित चीनी जासूसी जैसे चर्चित उदाहरणों के माध्यम से यह तर्क विकसित करते हैं कि बौद्धिक संपदा, व्यावसायिक रहस्य और अनुसंधान डेटा की चोरी केवल अलग अलग कंपनियों की समस्या नहीं है। जब ऐसी सूचनाएं लगातार निकाली जाती है, तो प्रतिस्पर्धी को अनुसंधान की लागत और समय बचाने, उत्पाद विकसित करने तथा रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी क्षमता तेज करने में मदद मिल सकती है। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की पुरानी दीवार डिजिटल अर्थव्यवस्था में कमजोर हो गई है। दूरसंचार, उन्नत विनिर्माण, विश्वविद्यालयी प्रयोगशालाएं और रक्षा आपूर्तिकर्ता सभी आकर्षक लक्ष्य हो सकते हैं। लेखक इस पैटर्न को चीन की व्यापक राज्य क्षमता और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के संदर्भ में पढ़ते हैं। साथ ही यह विश्लेषण पाठक को एक व्यावहारिक निष्कर्ष तक ले जाता है। केवल हमले के बाद डेटा बहाल कर लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चोरी हो चुकी जानकारी वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए पहचान प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला जांच, नेटवर्क विभाजन और संवेदनशील ज्ञान की सुरक्षा को व्यावसायिक अनुपालन के बजाय रणनीतिक निवेश की तरह देखना होगा। पुस्तक का जोर तकनीकी चोरी के आर्थिक और सुरक्षा दोनों परिणामों को एक साथ समझने पर है। तीसरा, रूसी प्रभाव अभियानों में हैकिंग और सूचना हेरफेर। रूस के संदर्भ में पुस्तक साइबर गतिविधि को केवल गोपनीय सूचनाएं चुराने की प्रक्रिया नहीं मानती। यह राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक विभाजन और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास बढ़ाने के व्यापक प्रयासों से उसके संबंध पर ध्यान देती है। चुनावी अभियानों, राजनीतिक संगठनों या सार्वजनिक विमर्श को निशाना बनाना और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक या भड़काऊ सामग्री फैलाना अलग तकनीकें लग सकती है, लेकिन उनका साझा लक्ष्य समाज की निर्णय क्षमता और संस्थागत वैधता को कमजोर करना हो सकता है। इस प्रकार साइबर सुरक्षा का प्रश्न सूचना की गोपनीयता के साथ साथ सूचना के सार्वजनिक अर्थ का भी प्रश्न बन जाता है। लेखक का ढांचा यह समझने में सहायक है कि किसी डेटा चोरी का प्रभाव तब बढ़ जाता है जब चयनित सामग्री को राजनीतिक समय के अनुसार प्रचारित किया जाए या जब ऑनलाइन मंचों पर पहले से मौजूद तनावों को बढ़ाया जाए। ऐसी गतिविधियों का प्रतिरोध कठिन है, क्योंकि लोकतंत्र में खुली बहस, स्वतंत्र मीडिया और राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है। पुस्तक इन मूल्यों को सीमित करने का सरल समाधान नहीं देती, बल्कि अधिक सजग संस्थाओं, बेहतर मंच नीतियों और सार्वजनिक समझ की आवश्यकता रेखांकित करती है। एक सीमितता यह है कि पुस्तक के चीन केंद्रित हिस्से की तुलना में रूस के लिए अलग विस्तृत अध्याय कम दिखाई देते हैं। फिर भी रूस संबंधी चर्चा यह महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करती है कि साइबर संघर्ष में लक्ष्य केवल नेटवर्क का नियंत्रण नहीं, नागरिकों के विश्वास और सार्वजनिक संवाद का वातावरण भी हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण अवसंरचना, क्लाउड और भरोसे की कमजोरियां। पुस्तक बताती है कि आधुनिक समाज की सबसे बड़ी साइबर कमजोरी केवल पुराने सॉफ्टवेयर या कमजोर पासवर्ड नहीं है, असली चुनौती वह व्यापक भरोसा है जिस पर डिजिटल सेवाएं चलती हैं। ऊर्जा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी संचार प्रणालियां अनेक निजी विक्रेताओं, दूरस्थ सेवाओं और साझा क्लाउड परिवेशों पर निर्भर है। यह व्यवस्था दक्षता देती है, पर किसी एक प्रदाता, पहचान प्रणाली या आपूर्ति श्रृंखला की कमी का प्रभाव बहुत दूर तक पहुंच सकता है। लेखक क्लाउड कंप्यूटिंग और अंतर्निहित भरोसे को विशेष चिंता के विषय के रूप में लेते हैं। उनका आशय यह नहीं कि क्लाउड स्वभावतः असुरक्षित है, बल्कि यह कि साझा डिजिटल ढांचे में पहुंच, अधिकार, निगरानी और जिम्मेदारी को पुराने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर नहीं संभाला जा सकता। किसी संवेदनशील खाते से समझौता होने पर केवल एक व्यक्ति का डेटा नहीं, व्यापक नेटवर्क या सरकारी संवाद प्रभावित हो सकता है। महत्वपूर्ण अवसंरचना का जोखिम भी इसी कारण विशिष्ट है। हमलावर तत्काल व्यवधान ना पैदा करे, फिर भी लंबे समय तक छिपी पहुंच बनाए रख सकता है। ऐसी पहुंच संकट की घड़ी में दबाव के साधन में बदल सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि सुरक्षा को परिधि आधारित रक्षा तक सीमित न रखा जाए। पहचान की सतत जांच, पहुंच को न्यूनतम रखना, नेटवर्कों को अलग करना, घटनाओं का त्वरित साझा विश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला की जवाबदेही अधिक लचीली व्यवस्था के आवश्यक घटक है। यह तकनीकी विषय को सार्वजनिक सेवा की निरंतरता से जोड़ता है। अंत में तकनीकी सुधार से आगे नीति, शिक्षा और साझा जिम्मेदारी। बैटलफील्ड साइबर की संरचना का एक उपयोगी पक्ष यह है कि घटनाओं के वर्णन के बाद लेखक समाधान की चर्चा करते हैं। उनका निष्कर्ष यह नहीं है कि कोई एक कानून, कोई एक सुरक्षा उत्पाद या केवल अधिक सरकारी निगरानी समस्या हल कर देगी। साइबर जोखिमों का स्वरूप ऐसा है कि सरकार, निजी कंपनियां, तकनीकी पेशेवर, विश्वविद्यालय, सोशल मीडिया मंच और नागरिक, सभी की जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। लेखक सुरक्षा इंजीनियरिंग को बेहतर बनाने, साइबर शिक्षा बढ़ाने, सोशल मीडिया से संबंधित नीतियों पर विचार करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक संगत प्रतिक्रिया विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह बहुस्तरीय दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्तियां निजी हाथों में होती है, जबकि गंभीर हमलों का असर सार्वजनिक सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ सकता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि प्रतिक्रिया केवल प्रतिशोध पर आधारित नहीं होनी चाहिए। रोकथाम, प्रतिरोध क्षमता, घटना के बाद पुनर्प्राप्ति और विश्वसनीय सूचना साझा करना सभी समान रूप से जरूरी है। शिक्षा का अर्थ केवल विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि नेतृत्व और आम उपयोगकर्ताओं को भी जोखिम, धोखे और सूचना हेरफेर की बुनियादी समझ देना है। इस हिस्से की शक्ति इसका व्यावहारिक उन्मुखीकरण है। हालांकि कुछ पाठक अधिक विषयवार संगठन पसंद कर सकते हैं, पुस्तक फिर भी यह स्पष्ट करती है कि साइबर सुरक्षा को तकनीकी विभाग पर छोड़ देना संस्थागत भूल है। प्रभावी रक्षा के लिए जवाबदेही, निवेश, प्राथमिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। निष्कर्ष में, बैटलफील्ड साइबर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो साइबर सुरक्षा को तकनीकी शब्दावली से आगे, राष्ट्रीय शक्ति और लोकतांत्रिक स्थिरता के संदर्भ में समझना चाहते हैं। साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानून, सार्वजनिक नीति, रक्षा अध्ययन और जोखिम प्रबंधन के विद्यार्थी तथा पेशेवर इससे लाभ ले सकते हैं। व्यावसायिक नेताओं के लिए भी यह उपयोगी है, क्योंकि पुस्तक बौद्धिक संपदा, क्लाउड निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। सामान्य पाठक को इससे यह ढांचा मिलता है कि डेटा चोरी, रैनसमवेयर, ऑनलाइन दुष्प्रचार और महत्वपूर्ण सेवाओं की कमजोरी को अलग अलग खबरों की तरह देखने के बजाय परस्पर संबंधित रणनीतिक चुनौतियों के रूप में कैसे पढ़ा जाए। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान चीन और रूस की गतिविधियों को अमेरिकी संस्थागत कमजोरियों के साथ एक ही विश्लेषण में रखने से बनती है। यह केवल हमलावरों की क्षमताओं की सूची नहीं देती, बल्कि भरोसे, खुली डिजिटल व्यवस्था और निजी सार्वजनिक निर्भरता की संरचनात्मक समस्या पर ध्यान देती है। ऐतिहासिक मामलों से वर्तमान खतरों तक जाने और फिर सुधार संबंधी सुझावों तक पहुंचने वाली इसकी रचना पाठक को कारण और प्रतिक्रिया के बीच संबंध समझने देती है। पुस्तक की एक स्वीकार्य सीमा चीन पर अधिक जोर और रूस पर तुलनात्मक रूप से कम विस्तार है, फिर भी इसका मुख्य योगदान स्पष्ट है। यह साइबर क्षेत्र को अदृश्य तकनीकी मोर्चा नहीं बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा, नागरिक विश्वास और राज्य क्षमता को प्रभावित करने वाला निरंतर संघर्ष बताती है। इसी कारण यह नीति संबंधी चर्चा के लिए उपयोगी आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं विलियम जी होलस्टाइन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।